At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPerksonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
Book My Show Jukebox presents an entertaining, informative podcast जो आपको सुनाएगा ऐसी बातें जिन्हें सुनकर आप ही बोल पड़ेंगे।
I almost knew that.
Hello and welcome to yet another episode of I almost knew that. आज के I almost knew that के स्पेशल एपिसोड में हम आपको बताएंगे ऐसे टेस्टी फूड फैक्ट्स जिन्हें सुनकर आप भी बोल पड़ेंगे। हमारे देश में कहावत है कि कुछ भी अच्छा करने से पहले मीठा जरूर खाना चाहिए, एंड वॉट बेटर देन आर वेरी ओन रसगुल्ला। बट डिड यू नो द ओरिजिन ऑफ दिस माउथ वाटरिंग डिश? ओडिशा की एक पुरानी कहानी है। जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा करके गुंडेचा मंदिर पहुंचे तो माता लक्ष्मी उनसे नाराज हुई और उन्हें अंदर आने नहीं दिया। तब उन्हें मनाने के लिए जगन्नाथ जी ने रसगुल्ला दिया। तो इसकी शुरुआत तकरीबन 700 साल पहले पुरी के मंदिर में हुई, फिर कोलकाता, नेपाल और राजस्थान से होते हुए सीधा बकिंगम पैलेस पहुंच गई। क्वीन को भी रसगुल्ला बहुत पसंद है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये रसगुल्ला की डिश की रेसिपी मंदिर से बाहर कैसे आई, तो इसके पीछे की भी एक स्टोरी है। अकॉर्डिंग टू दैट, भुवनेश्वर शहर के बाहर एक गांव में इतनी गायें थी कि लोगों को दूध फेंकना पड़ता था। जब मंदिर के पुजारियों ने ये देखा तो उन्होंने लोगों को ये रसगुल्ला बनाने की रेसिपी सिखाई जिससे दूध को फेंके जाने से रोका जा सके। आइए चलते हैं आगरा की ओर। आगरा अपने ताजमहल के लिए फेमस तो है ही, साथ में एक और चीज के लिए फेमस है। बताइए। जी हाँ, आगरा के पेठे। पर क्या आपको पता है ताजमहल और पेठे दोनों कनेक्टेड हैं? क्योंकि ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के दौरान सारे मजदूर रोज दाल रोटी खाकर बोर हो चुके थे, और जब भी ब्रेक लेते तो वो टायर्ड मजदूर वापस काम में लगने में बहुत टाइम लगाते। उनको इंस्टेंट एनर्जी सोर्स चाहिए था जिससे उनकी एनर्जी रिस्टोर हो जाए और वो जल्दी से काम पर लग जाए। तो शाहजहां के एक पीर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रेयर करने लगे, और प्रेयर के दौरान पीर साहब एक ट्रांस में चले गए, और उसी ट्रांस में उन्हें खुदा ने खुद पेठे की रेसिपी बताई, और तब जाकर पाया आगरा ने पेठा। आगरा से ही थोड़ी दूर पर है राजस्थान। राजस्थान की सबसे फेमस डिश है दाल बाटी चूरमा। पर अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस डिश की ओरिजिन जंग के कारण शुरू हुई तो? जी हाँ, डोंट गेट शॉक्ड, इट्स ट्रू। बाटी बनाने के लिए सिर्फ आटा और थोड़े से पानी की जरूरत होती है। तो जब चित्तौड़गढ़ के सैनिक युद्ध में जाते तो ऑब्वियसली डेजर्ट में पानी तो मिलता नहीं था, तब इस डिश की शुरुआत हुई, जो कि लॉन्ग लास्टिंग तो थी ही, साथ में पानी भी कम चाहिए था। बाटी के साथ दाल और चूरमा मिल जाए तो राजस्थानियों को और कुछ नहीं चाहिए। राउंड राउंड स्टॉप। जी नहीं, मैं कोई पकड़म पकड़ाई का खेल नहीं खेल रहा, मैं तो बना रहा हूं गोल गोल जलेबी। जलेबी एक ऐसी डिश है जिसका नाम मात्र ही मुंह में पानी ले आता है। बट डिड यू नो, जलेबी इंडियन डिश नहीं है। जलेबी तो पर्शियन इन्वेडर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी। पर्शिया में रमदान के पावन महीने में जनता में जलेबियां बांटी जाती थी। तकरीबन 15th सेंचुरी में जलेबी को हिंदुस्तान में कहते थे कुंडलिका या जलवलिका। अलग अलग देशों में उन्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे अरबिक कंट्रीज में जलाबिया, जिलेबी मालदीव्स में जलेबिया, ट्यूनिशिया, लिबिया और अल्जीरिया में, और जेरी नेपाल में। नाम चाहे कुछ भी हो, जलेबी की मिठास तो एक ही रहेगी। मीठे से अब बढ़ते हैं थोड़ा खाने की ओर। और अगर इंडिया में कोई डिश ऐसी है जो पूरे देश को जोड़कर रखती है तो वो है बिल्कुल सही, बिरयानी। पर्शिया में चावल को ब्रिंज कहते हैं, तो माना जाता है कि बिरयानी शब्द भी ब्रिंज शब्द से ही निकल कर आया है। पर क्या आपको पता था, the all loved बिरयानी जो हमें लगता है कि हैदराबादी नवाबों की देन है, उसे इंडिया में लाने वाले थे तैमूर द लेम। जी हाँ, सही सुना, द बारबेरियन तैमूर द लेम। बट बिरयानी में दम लगाना, मतलब कि दम बिरयानी बनाने का तरीका हिंदुस्तान की ही देन है। दरअसल हुआ ऐसा कि जब अवध राज्य में भुखमरी थी, तब वहां के नवाब ने बोला कि सारी प्रजा के लिए खाना राजमहल के किचन से ही बनकर जाएगा। अब इतनी क्वांटिटी में खाना बनाने के लिए बर्तन तो थे नहीं, तो रॉयल शेफ ने मिट्टी की हांडियों में बिरयानी बनाना शुरू किया और ऐसे हमको मिली दम बिरयानी।
Everybody is ready to have some pizza, isn't it? Who doesn't love a pizza?
In fact, pizza was simply bread and it derived its name from Italian word for flat bread, pizza. जब साउथ अमेरिका से टोमेटोज यूरोप में आए, तो इटली के शहर नेपल्स के आसपास रहने वालों ने अपने ब्रेड के ऊपर टोमेटोज डालकर खाना शुरू किया, एंड दैट वाज द ओरिजिन ऑफ पिज्जा। पिज्जा को वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिला वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, जब बाकी यूरोपियंस और अमेरिकन सोल्जर्स इटली में स्टेशन थे। उन लोगों को पिज्जा बहुत पसंद आया। पहले पिज्जा सिर्फ कॉमन लोग ही खाते थे और नोबिलिटी यानी राजा रानी लोगों को पिज्जा उतना पसंद नहीं था। फिर एक बार इटली की रानी मार्गरीटा के लिए एक पिज्जा मेकर ने पिज्जा बनाया और उसे गार्निश करने के लिए उसपे टोमेटोज, मोज़रेला और बेसिल यूज किया, क्योंकि ये तीन कलर्स इटली के नेशनल फ्लैग से मैचिंग थे। पर फ्लैग बनाने के चक्कर में बन गया एक नए वैरायटी का पिज्जा, जिसे आज हम पिज्जा मार्गरीटा के नाम से जानते हैं, ऑफ कोर्स नेम्ड आफ्टर द क्वीन। कभी आपने ये सोचा है कि चॉकलेट मुंह में डालते ही पिघल क्यों जाता है? वो इसलिए क्योंकि चॉकलेट का बॉइलिंग पॉइंट है 93 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हिच इज स्लाइटली लेस देन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। सम पीपल से चॉकलेट इज अ काइंड ऑफ वेजिटेबल, क्योंकि चॉकलेट कम्स फ्रॉम कोकोआ एंड कोकोआ इज अ ट्री। वर्ल्ड का 70% कोकोआ अफ्रीका से एक्सपोर्ट होता है। देयर वाज अ टाइम व्हेन कोको बीन्स वर यूज्ड एज करेंसी इन साउथ अमेरिका। And now it is time for some coffee. Coffee हम सब बहुत ही चाव से पीते हैं, पर आपको पता है how did humans understand that coffee can be used as an energizing drink? एक बहुत ही famous कहानी सुनाई जाती है इथियोपिया में, कल्दी। कल्दी और उसके डांसिंग गोट्स की। एक दिन जब कल्दी की गोट्स यानी बकरियां चर कर वापस आई, तो कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी। वो एकदम हाई और हाइपर थी, यहां वहां कूद रही थी। कल्दी ने जब ये बिहेवियर कुछ दिनों तक नोटिस किया, तो उसने सोचा कि गोट्स का पीछा करना चाहिए। वहां जाकर उसने देखा कि सारी बकरियां घास छोड़कर लाल बेरीज खा रही हैं। जब कल्दी ने वो रेड बेरीज खाई, तो उसे अच्छी लगी। एंड देन ही ब्रॉट इट होम एंड बॉइल्ड इट, एंड दैट्स हाउ वी हैव कॉफी। अजी, कबाब्स किसे नहीं पसंद? पर क्या आपको पता है कबाब की डिस्कवरी कैसे हुई? पर्शियन सोल्जर्स जब रात को लड़ाई के बाद कैंपिंग करते थे, तो मीट पकाने के लिए उतने चूल्हे नहीं होते थे, तो सोल्जर्स मीट को अपने तलवार में डालकर उसे कैंप फायर में फ्राई कर लेते थे। यहीं से इस तरीके को कबाब नाम भी मिला, विच इज पर्शियन वर्ड फॉर फ्राइंग। वी ऑल लव आवर सैंडविचेस, but did you know sandwich is actually the name of a place in kent england। sandwich province ke ek statesman the john montagu। mr montagu ko gambling ka bada shauk tha, itna shauk tha ki wo apne table se khane peene ke liye bhi nahi uthte the। once when he felt hungry unhone apne naukar ko bola ki thoda meat do bread ke beech mein dal kar le aaye, kyunki us samay sirf bartan mein hi khane ki parampara thi aur wo bhi dining table par। ऐसे चलते फिरते खाना नहीं खाया जाता था। जब लोगों ने यह देखा, हर बार उन्हें खाने के पास नहीं जाना पड़ेगा और कभी खाना भी उनके पास आएगा, they absolutely loved the idea of mobile food, which was really simple to prepare as well। फिर क्या था, Earl of Sandwich के नाम पर इस डिश का नाम सैंडविच पड़ गया। ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम है कि नहीं, और स्पेशली तब जब आइसक्रीम आइसक्रीम कोन में खाई जाए. But did you know from where did this idea of selling ice cream in a cone originate from? 1904 में सेंट लुइस के वर्ल्ड फेयर में एक आइसक्रीम वेंडर अपनी आइसक्रीम बेच रहा था. तभी उसकी प्लेट्स खत्म हो गई. ये देखकर अर्नेस्ट हमवी, जो कि वहीं वॉफल पेस्ट्री बांट रहे थे, उन्होंने इस वॉफल पेस्ट्री को कोन के शेप में करके उस आइसक्रीम सेलर को दे दिया. जब उस आइसक्रीम सेलर ने उस वॉफल के कोन में आइसक्रीम दिया, तो पेस्ट्री होने की वजह से लोग उस वॉफल को भी आइसक्रीम के साथ खा गए. फिर क्या था, लोगों को वो इतना पसंद आया कि उन्होंने प्लेट में लेने के बजाय आइसक्रीम कोन में मांगना शुरू कर दी. That's how we have the cone in ice cream cone. अब इतनी सारी खाने की बातें हो गई हैं, मुझे तो भूख लगाई. आज के एपिसोड में बस इतना ही. आप सुन रहे थे बुक माई शो जुकबॉक्स प्रेजेंट्स आई ऑलमोस्ट न्यू दैट इन एसोसिएशन विद ऑडियो बूम पावर्ड बाय M&M Talkies.